Şiddetli. Şiddetli. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और दिलचस्प कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने मनाया संगीत दिवस। इस संदर्भ में विश्व हिंदी सचिवालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत व भारत से बाहर अनेक हमारे कलाकार जो हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं, आप हैं डॉक्टर अंजना सिंह सिंगर जी, जो साहित्य प्रेम के कारण केंद्र सरकार की सेवा से स्वैच्छिक आप सेवानिवृत्त हैं, लेकिन वे साहित्यकार हैं, लेखिका हैं और आजकल वे कई एजुकेशनल संस्थाओं से जुड़ी हुई और एज ए चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत हैं। वे गांव-गांव में उन लोगों के लिए इन एजुकेशनल संस्थाओं से जुड़ी हैं जहां बच्चों के विकास के लिए, उनके हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वो कार्यरत हैं, जहाँ से बच्चे पढ़कर हिंदी जो है अपना भविष्य जो है संवारते हैं। आज हमारी मुलाकात हम आपसे करवाएंगे और मैं बताती चलूँ क्यों, क्योंकि उनकी एक पुस्तक का लोकार्पण जो हिंदी सचिवालय में कार्यक्रम हुआ, उनमें उनकी इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ। उनकी पुस्तक का नाम है यादों की रियासत। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की ओर। अंजना जी नमस्कार।
नमस्कार सुशी जी,
बहुत अच्छा लगा आप मॉरिशस में एक बार फिर हमें आपसे मिलने का, रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और जैसे कि हमने विश्व हिंदी सचिवालय में इतने भव्य कार्यक्रम संगीत दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, उसमें आपकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ, आपकी पुस्तक यादों की रियासत, जो गज़लों की एक पुस्तक रही है। मैं जानना चाहूँगी अपने श्रोताओं के लिए कि आपको गज़लों की, जैसे कि आप साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, कई पुस्तकें लिख चुकी हैं आपकी, कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन गज़ल जो है वो साहित्य से कहीं हटकर है
जी।
तो मैं चाहूँगी आप बताएं कि आपको गज़लों की प्रेरणा कहाँ से मिली
जी। शशि जी, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ संगीत दिवस की, और चाहती हूँ कि संगीत तो वो चीज़ है कि जो रूह तक को जो है छूती है, सुकून पहुँचाती है, और गज़ल उसी का एक हिस्सा है। और गज़ल तो ऐसा है कि जो भावों की भाषा है। गज़ल का नाम ही गज़ल है, जिसका अर्थ होता है कि प्रेमिका से बातचीत करना या प्रेम की भाषा मैं जो है
व्यक्त करना,
इसका अर्थ यही है। और तो गज़ल का, जैसे कि आपने कहा कि कहाँ से मुझे इसकी प्रेरणा मिली है, तो साहित्य से मेरा बचपन से लगाव था। लेकिन जहाँ तक लिखने की बात हुई, तो सबसे पहले मैंने छंदों को सीखा, क्योंकि एक सीधी सपाट भाषा में लिखना मुझे ठीक नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि जो हमारी परंपरागत हिंदी की जो परंपरा है, छंद परंपरा हिंदी और संस्कृत की, तो उससे जुड़ा जाए, तो मैंने वो सीखा। लेकिन फिर कुछ ऐसी जगहों पर रहे, जैसे कि हम अलीगढ़, हमारी पोस्टिंग रही, हस्बैंड वहाँ पर रहे, तो अलीगढ़ में एक माहौल था गज़ल का, उर्दू का। तो मंचों पर जाते हुए सबसे पहले तो मैंने उच्चारण को महत्व दिया, तो उसके लिए मैंने उर्दू सीखी ताकि मेरा उच्चारण ठीक हो। और मंचों पर जाते हुए फिर मुझे गज़ल से लगाव पैदा हुआ, तो मैंने उर्दू भी सीखी, हिंदी भी सीखी, और जो गज़ल मैंने कहना शुरू किया है तो हिंदी और उर्दू मिक्स, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। तो यहाँ से मुझे लगन गज़ल के प्रति जो है मेरा लगाव पैदा हुआ।
जहाँ आपने कहा कि आप अलीगढ़ से ज़्यादा आपका बावस्ता वहाँ हुआ,
जी, जी।
रहीं आप काफ़ी समय तक, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं जब जैसे ये गज़ल का नाम आता है तो उर्दू भाषा जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। लेकिन आज उर्दू और हिंदी, जैसे आपने स्वयं बताया कि आप की भाषा गज़ल में हिंदी और उर्दू दोनों, क्या गज़लों में हिंदी का आना कितने हद तक हमारे श्रोताओं ने स्वीकारा है, और आपने कहा कि आपने गज़लों को हिंदी में भी प्रस्तुत किया है, तो कैसा आपको लगा अनुभव और कैसा फीडबैक मिला कि हिंदी के देखें हिंदी और उर्दू में जबकि ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उर्दू की मिठास हिंदी में मिलकर, खड़ी बोली में मिलकर कहीं ना कहीं उसको और बेहतर बनाती है। और इसीलिए गज़ल जो है अपने आप जो है ऐसी एक भाषा है जिसने आपने खुद कहा कि प्रेम की भाषा है, तो उसमें खड़ी बोली का आना किस हद तक लोगों ने स्वीकारा और किस हद तक आपने उसको,
मैं बताती हूँ कि गज़ल जो सबसे पहले आई है उसको कहते थे कि पहले दरबारी और उसकी भाषा विदा हुआ करती थी। ये वस्तुतः गज़ल जो है वो अरबी अदब की काव्य विधा है जो फारसी से और उर्दू से होते हुए हिंदी में आई, और इसका जो शुभ आरंभ माना जाता है, कहते हैं कि कबीरदास जी, वैसे तो खुसरो जो है अमीर खुसरो, उनकी गज़लों में भी लोगों ने हिंदी गज़ल ढूंढ ली है, लेकिन जो कबीर हैं उन्होंने, उनकी गज़ल है एक दो पंक्तियां बड़ी मशहूर हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो ये कबीर की दो पंक्तियां हैं जो कहते हैं कि जो मतलब कि अद्वैतवाद के मर्म को दर्शाती हैं। तो इसके बाद लेकिन उसका जो आरंभ माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है।
अच्छा, क्योंकि खड़ी बोली की शुरुआत ही वहीं से होती है आधुनिक काल।
हाँ, लेकिन उनके युग के जो और लोग भी थे और साहित्यकार थे, उन्होंने भी गज़ल पर थोड़ा सा जो है वो आजमाया है गज़ल को, तो लेकिन उनके भी भाषा में कहीं ना कहीं उर्दू जो है वो उसका प्रभाव देखा जाता था, उर्दू और अरबी का। लेकिन आगे चल के जब ये जो त्रिलोचन शास्त्री जी आए हैं, तो काफ़ी कई जगह त्रिलोचन शास्त्री जी को हिंदी गज़ल के शुभारंभकर्ता के रूप में माना जाता है। लेकिन जो ख़ास तौर से जो और लोगों ने स्वीकारा है, जिनको जो विशुद्ध हिंदी में जिन्होंने गज़लें लिखी है, लोक भाषा में गज़लें कही हैं, तो वो हैं दुष्यंत जी।
मैं यही कहने वाली थी, तो उन्होंने जो है इसका आगाज किया है हिंदी।
बिल्कुल आगाज किया है। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ गज़ल को प्रेम की भाषा माना जाता था कि वो बस वो प्रेमिका और विरह वही लिखेंगे, लेकिन इन्होंने उसको जन चेतना से जोड़ा, बहुत व्यापक
उनकी गजलों में देखा जा सकता है
व्यापकता देखी जा सकती है। तो ये था जैसे कि उनकी गजल है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने
गजल के माध्यम से।
अब जैसे कि एक छोटी सी बात वो कहते हैं, जैसे लोक भाषा में एक चल जो लोगों को ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा जिसे कहते हैं, जो लोगों को ज़्यादा समझ में आती है कि लपट आने लगी है अब हवाओं में, ओ सारे और छप्पर फेंक दो तुम भी। तो ये देखिए कितनी
सीधी भाषा
है, ओ सारे छप्पर ये सब उस टाइप का है।
हाँ, जैसे मैंने आप कह रही हैं कि पहले जब उर्दू गज़ल होती थी उसकी भाषा बहुत फारसी या अरबी या उर्दू होती थी, तो वो कभी कभी लोगों की समझ के बाहर हो जाती थी। जबकि हिंदी जो है, हिंदी खड़ी बोली जो है, वो काफ़ी लोगों के आम तबके के लोगों के लिए बहुत क्लोज, बहुत नज़दीक की है। और इस तरह से मैं समझती हूँ गज़लों में जब हिंदी आई है तो उसकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। इसके बारे में क्या आप कहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि उसकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ी है, और आज के ज़माने में देखिए कि लोग गज़ल की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। ख़ासतौर से सोशल मीडिया आने के बाद तो देखिए कि लोग कोशिश करते हैं लिखने।
हाँ, सोशल मीडिया पर अपना कुछ ना कुछ वो गजलों के रूप में पेश करते रहते हैं।
हालांकि और सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब कि गजल के लिए बहुत बड़ी अच्छी।
हाँ, क्योंकि पहले समझा जाता था कि जिनको उर्दू आती है सिर्फ वही गजल लिख सकते हैं,
वही कह सकते
कर सकते हैं।
अच्छा, एक चीज शशि जी, एक चीज मैं और बता दूं, गजल के साथ खास बात यह है कि गजल को कभी लिखना नहीं कहा जाता।
हाँ,
गजल कहने और सुनने की चीज है।
बिल्कुल, आपने कहा वो भावों की अभिव्यक्ति प्रवाह के साथ निकलती है जिसको आप अभिव्यक्त कर देते हैं।
जैसे हम छंद लिखते हैं लेकिन गजल लिखते नहीं, गजल कहते हैं। हाँ, कभी भी जैसे किसी ने अगर शेर कहा,
हाँ,
तो कोई शेर अगर उससे हो गया तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने एक शेर लिखा, वो कहेगा मुझसे एक शेर हो गया।
अच्छा, और ये भी एक नई चीज़ हमारे श्रोता सुन रहे होंगे इस समय, तो उनको पता चलेगा कि गज़लें जो हैं वो कही जाती हैं,
वो लिखी नहीं जाती है। लिखना अगर कोई कहता है तो वो गलत है, इसका मतलब उसको जानकारी
गज़ल की उतनी
नॉलेज नहीं है।
हाँ।
तो अब देखिए कि जैसे कि और व्यापक उसमें जोड़ा गया है, जैसे हमारे कुंवर बेचैन जी आए, ये नीरज जी आए, बेकल उत्साही हैं, राहत इंदौरी हैं, मुनव्वर राणा, वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, बहुत सारे लोग जो आए, बहुत अच्छी अच्छी गज़लें कही और जन चेतना से, समाज से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने कहा, जो विसंगतियाँ उनमें फैली थी उनके बारे में उन्होंने अपनी गज़ल के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश।
मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी जो पुस्तक जिसका लोकार्पण हुआ जी, यादों की रियासत में, आपने किस तरह की गज़लों को लिया है और लोग जो हैं, आपके पाठक जो हैं, वो किस तरह से इसको आंकेंगे?
मैंने इसमें हर रंग की गज़लें कही हैं।
अच्छा।
जैसे कि मैंने प्रेम की गज़ल भी कही, मैंने इसमें सामाजिक विसंगतियों को भी उकेरा है, इसमें भावनात्मक, जैसे कि एक व्यक्तिगत जो भावनात्मक, जो कहते हैं कि कोई चीज़ हर्ट करती है।
अच्छा।
तो वो वियोगी होगा पहला कवि वाला वो होता है, तो उस तरह की चीज़ें भी मैंने दी है। अब जैसे प्रेम के बारे में दिया है, मैं एक आध लाइन बताती
चलती हूँ। जरूर आप कहें
कि जैसे कि हासिल मोहब्बत में गम बहुत ज़रूरी है, ये अगर नहीं तो फिर शायरी अधूरी है।
बिल्कुल।
तो प्यार बिन मुकम्मल कब आदमी हुआ जाना, प्यार जो नहीं तो फिर जिंदगी अधूरी है, है ना। तो ये इस तरह की गज़लें प्यार की भी दे दी, और कभी जैसे कि कुछ बड़ी बात कहनी हुई, कभी जैसे ठेस लगती है भाव को, हमने बहुत अच्छे से किसी से व्यवहार किया और उसने हमसे पलट कर हमें कोई दगा दे दिया, कि जमाने पर जब भी भरोसा हुआ है मेरे साथ में कोई धोखा
हुआ है। बहुत खूब।
सगा हो, करीबी हो या दोस्त ही हो, पर मुश्किल से कोई किसी का हुआ है, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ जैसे कि प्रोत्साहन देने वाली चीज़ें भी, सींचिए पौधों को तो फूल और फल देते हैं, वक्त लगता है मगर कुछ तो बदल देते हैं। ऐसे लोगों की तरक्की नहीं रुकती है कभी, वक्त के प्रश्नों का दो टूक जो हल देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, जैसे कि एक प्रेरक बातें बोलना। अच्छा, गज़ल की खास बात तो यही है कि इसमें दो पंक्तियों में जो बात कही जाती है वो अपनी संपूर्णता को लिए होती है, जैसे कि हमारे हिंदी के दोहों में होती है, दोहे में दो पंक्तियों में ही सारी बात कह दी जाती है, उसी तरह गज़ल के शेरों में भी पूरी बात कह दी जाती है। ये इसकी खास बात है।
गज़लों की बात ये कि मतलब बहुत टूक शब्दों में, दो टूक शब्दों में आप अपने सारे भावों को उडेल कर रख सकते हैं
और वो लोगों के अंदर तक, मर्म तक को स्पर्श करती है।
बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये पुस्तक यादों की रियासत लोगों के जहन में हमेशा याद बनकर रहेगी। और आज आप मॉरिशस में हमारे साथ आई हैं और इसका लोकार्पण हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई है।
बहुत
धन्यवाद। और नवोदित जो लेखक हैं या गज़लकार हैं उनको क्या आप संदेश देंगी? मैं चाहूँगी आपसे, क्योंकि मैं समझती हूँ जब हिंदी में गज़लों को इतने लोकप्रियता मिल रही है तो उसके बारे में कुछ कहें कि अंत में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का समय हो रहा है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि क्या संदेश के रूप में आप देंगे।
देखिए, गज़ल के बारे में मैं ये कहूँगी कि गज़ल एक साहित्यिक धारा नहीं बल्कि संवेदनाओं का समंदर है, और इसमें जो डूबेगा वही मोती पाएगा। तो इस संबंध में डूबिए और अच्छी अच्छे शेर, अच्छे अच्छे भाव लेकर आप लोग आएं, लेकिन उसके पहले गज़ल का जो एक अनुशासन है, गज़ल की जो बहर है, जो स्केल है उसकी, जो मीटर है, मतलब उसका पूरा व्याकरण है, उसे ज़रूर समझें, क्योंकि उससे हटकर जो भी गज़ल कही जाएगी वो गज़ल नहीं, गज़ल जैसा तो कुछ हो सकता है पर गज़ल नहीं होगी।
बहुत खूब, आपने बहुत ही गंभीर, हमारे नवोदित जो गज़लकार होंगे वो इस पर गौर फरमाएंगे और इसको ध्यान में रखकर अच्छी गज़लों का निर्माण करेंगे, ताकि पाठक उनकी गज़लों को सराहें। और आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे और आपके भविष्य के लिए और गज़लें हमारे श्रोताओं के लिए आगे भी आएंगी, जिनको हम हमेशा पढ़ते रहेंगे आपके पाठक, और कहीं ना कहीं संगीत के कार्यक्रम में उसको ज़रूर शामिल करते हुए हम आपको इस प्रोग्राम में समय देंगे। आज के लिए हमारा प्रोग्राम क्षितिज जो है यहाँ समाप्त हो रहा है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के से हम धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।